आज है 10 जून दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। बांग्लादेश में पुलिस ने चलाया इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ अभियान, 900 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित प्रोफेसर ने विपिन श्रीवास्तव को प्रो वीसी बनाए जाने के विरोध में दिया इस्तीफा।
मैं देख रहा हूँ हर चीज में यूनिवर्सिटी दलितों के खिलाफ ही चल रहे। दलितों क्या करेंगे सर, दलितों को जीने का ये हक नहीं होता है क्या?
चलो रियो में आज चर्चा, 1948 ओलंपिक में भारत को मिली जीत की।
जब हमने 4 गोल कर दिए तो काफी इंग्लैंड के जो वहाँ लोग थे वो भी इंडिया के हक में शोर कर रहे थे, कम ऑन इंडिया, मेक इट हाफ ए डजन, मेक इट हाफ ए डजन।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ हाल में हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद ही ये अभियान चलाया गया। महान बॉक्सर मोहम्मद अली को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आज हजारों लोग उनके गृहनगर लुइविल में जुटे हैं। 3 बार हैवीवेट चैंपियन रहे मोहम्मद अली की बीते शनिवार को मौत हो गई थी। मोहम्मद अली को सुपुर्दे खाक करने के पहले उनके शव को उनकी जिंदगी से जुड़ी अहम जगहों तक ले जाया जा रहा है। उनकी इस अंतिम यात्रा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और कॉमेडियन बिल क्रिस्टल समेत कई हस्तियां मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि भाषण भी देंगे। सीरिया के दारेया शहर में साल 2012 के बाद पहली बार राहत सामग्री बांटी गई है। राहत सामग्री में दवाएं और खाने का सामान शामिल है। ये शहर राजधानी दमिश्क के पास है। शहर में करीब 4,000 लोग फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहां अभी और मदद पहुंचाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के प्रवक्ता गियेन लारके ने कहा, दारेया शहर में 2012 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी थी। अब हम ये करने में कामयाब रहे हैं। हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले अपने सहयोगियों पर गर्व है। हम करीब 2400 लोगों को खाने के पैकेट दे चुके हैं। हमने दवाएं भी बांटी हैं। करीब 4,000 लोगों तक राहत का दूसरा सामान पहुंचाया गया है। ये थे येन लारके के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बीते मार्च में हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अली है। उसकी उम्र 31 साल है और वह बेल्जियम का नागरिक है। मार्च में एयरपोर्ट और मेट्रो पर हुए हमले के मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। हमले के दौरान 3 चरमपंथी मारे गए थे। इराक के फलूजा में सेना के अभियान में शामिल एक यूनिट के कमांडर के मुताबिक इराकी सेना फलूजा के केंद्र से महज 3 किलोमीटर दूर है। जनरल ए अल सादी ने फ्रांस की न्यूज एजेंसी को बताया कि फलूजा में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान शुरू होने के बाद से करीब 500 चरमपंथी मारे गए हैं। अनुमान है कि फलूजा शहर में करीब 90,000 आम लोग फंसे हुए हैं। युगांडा की सेना ने विद्रोही समूह से जुड़ाव के संदेह में कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना के प्रवक्ता ने बीबीसी से गिरफ्तारी की पुष्टि की है और बताया है कि इस मामले में जाँच जारी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश के भीतर 4 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या हो चुकी है। कल भी पाबना के उत्तरी जिले में एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 सालों में 40 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं और पुलिस जाँच के आधार पर चरमपंथियों की धरपकड़ कर रही है। पूरी जानकारी के साथ अंजुम शर्मा।
बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ पुलिस ने 900 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक गुरुवार को एक हिंदू मठ के कार्यकर्ता नित्यरंजन पांडे पर कुछ लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर हमला किया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी मंगलवार को एक हिंदू पुजारी का शव मिला था, जिसका सिर धड़ से लगभग अलग कर दिया गया था। ज्यादातर हमलों का आरोप इस्लामी चरमपंथी समूहों पर लगाया जा रहा है। पाबना जिले के पुलिस अधिकारी आलमगीर कबीर का कहना है कि नित्यरंजन पांडे के गले पर हमला किया गया था, जिस कारण उनकी मौत हुई। उन्होंने बताया,
ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम एक कर्मचारी नित्यरंजन पांडे
वो ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम में सहायक थे। कुछ अज्ञात हमलावरों ने हथियार से उनके गले पर हमला किया। हम हथियारों की तलाश कर रहे हैं। हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। जहां ये हादसा हुआ वो एक शांत जगह थी, जिसका हत्यारों ने फायदा उठाया। वो डायबिटीज से पीड़ित थे और सुबह नियमित सैर के लिए निकलते थे। ऐसा लगता है कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे।
वहीं ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम के सचिव जुगल घोष बताते हैं कि नित्यरंजन पांडे बेहद सादा और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्हें संदेह है कि अल्पसंख्यक होने के कारण नित्यरंजन पांडे को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा,
नित्यरंजन पांडे उन्हें हमारे प्राय 40 বছরের একজন কর্মী একটা ব্যক্তিগত গ্রেস থাকলে যে এটা ঘটে।
नित्यरंजन पांडे इस आश्रम के साथ पिछले 40 सालों से काम कर रहे थे। जहां तक मुझे पता है, उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे लगता है जिस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, शायद ये उसी से जुड़ा हुआ मामला हो। शायद उन्हें इसीलिए मारा गया हो क्योंकि वो एक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए थे।
पिछले एक सप्ताह में बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी, एक ईसाई दुकानदार, आतंकवाद रोधी अधिकारी की पत्नी और अब हिंदू मंदिर के कार्यकर्ता की हत्या की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस्लामी चरमपंथियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा अभियान पिछले कुछ समय से हो रही हत्याओं की पुलिस जांच के आधार पर चलाया जा रहा है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पिछले सप्ताह हुई पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई है। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां लगभग 8% जनसंख्या हिंदुओं की है। धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर, अकादमिक जगत के लोग, समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, शिया, सूफी, अहमदी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, ये वो सूची है जो लगातार इस्लामी चरमपंथियों का निशाना बन रहे हैं। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में चरमपंथी समूह हैं जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन हमलों के पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर अभी तक संदेह बना हुआ है। जब तक ये हत्याएं नहीं रुकती, तब तक सरकार को भी इस आरोप का सामना करना पड़ता रहेगा कि वो सुन्नी प्रभुत्व देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है।
बांग्लादेश में 900 से ज्यादा लोगों की हुई गिरफ्तारी। ये थे अंजुम शर्मा।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित प्रोफेसर श्रीपति रामुडू ने प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव को प्रो वीसी बनाए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने मौजूदा प्रो वीसी पर आरोप लगाते हुए उन्हें दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के लिए जिम्मेदार बताया। बीबीसी से बातचीत में प्रोफेसर रामुडू ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में दलित विरोधी माहौल है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों और शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। पूरे ब्यौरे के साथ दिल्ली से सलमान रावी।
प्रोफेसर श्रीपति रामुडू सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के विभाग अध्यक्ष थे और उनका आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय में अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि दलित छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ माहौल विषाक्त होता जा रहा है। वैसे तो प्रोफेसर रामुडू के इस्तीफा देने का मुख्य कारण है विपिन श्रीवास्तव का प्रो वाइस चांसलर एक के पद पर नियुक्त किया जाना। विपिन श्रीवास्तव विश्वविद्यालय की उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने दलित छात्र रोहित वेमुला सहित 5 छात्रों के विरुद्ध सजा की अनुशंसा की थी। बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर रामडू कहते हैं कि दलितों के खिलाफ ऐसा माहौल देश के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है।
हर चीज में यूनिवर्सिटी दलितों के खिलाफ ही चल रहे। दलितों क्या करेंगे सर? दलितों को जीने का ये हक नहीं होता है क्या? बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, असम यूनिवर्सिटी में काम किया, जामिया मिलिया में काम किया, इधर आने के बाद मेरा मन बहुत ये पर्टिकुलरली ये इंसिडेंट के बाद, ये रोहित वेमुला इंसिडेंट के पहले दो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, ये तो बहुत ये पेन हो रहा है क्योंकि सब लोग ये कैस्टिस्ट एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा हो गया सर।
प्रोफेसर रामडू का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी आशीष जैकब का कहना है कि प्रोफेसर रामडू ने अपना इस्तीफा रजिस्ट्रार को सौंपा है, जिसे अब कुलपति पुडेली अप्पा राव के पास भेज दिया गया है, जो उस पर फैसला करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और रोहित वेमुला के साथी रहे प्रशांत दोंता का कहना है कि विवादास्पद रहे विपिन श्रीवास्तव को कुल सचिव बनाया जाना ही इस बात का सबूत है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन कितना जातिवादी है।
इनको प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट करना एक पूरा कास्टिस्ट एंगल एक्सपोज कर रहा है पुडेली अप्पा राव का। अंबेडकर के बारे में बात करने वाले लोगों को दबाने की साजिश कोशिश चल रही है। दलित छात्रों के खिलाफ बहुत सारे एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी के अंदर करवा रहे हैं। ये सब एक हॉस्टल का एनवायरमेंट तो जरूर है, ये अभी यूनिवर्सिटी में एक सफोकेटिंग का एनवायरनमेंट भी है।
दूसरी तरफ हैदराबाद स्थित छात्र नेता मोहन धारावत कहते हैं कि जिसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हों, उनकी जांच किए बिना किसी को कुल सचिव नियुक्त करना अपने आप में हैरान करने वाली बात है।
विपिन श्रीवास्तव के ऊपर बहुत सारा कंप्लेंट है फ्रॉम द दलित और एसएससी स्टूडेंट्स के सामने से, उसके लिए गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं कर रहा और वापस में उसको प्रमोशंस दे रहा है, वो प्रॉब्लम है। सो व्हाई डोंट दे टेक अनदर पर्सन, क्यों नहीं ले रहा, ओनली उसको क्यों ले रहा वो, क्यों बोलो तो वो कंपलसरी डिस्क्रिमिनेटर फैक्टर है, वो कंपलसरी ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए किल करने के लिए कर रहा है और उसका साथ वो आरएसएस का हाथ भी।
पहले दलित छात्र सेंथिल कुमार और फिर रोहित वेमुला की मौतों के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय पर पहले ही उंगलियां उठ रही थीं, मगर प्रोफेसर श्रीपति रामडू के इस्तीफे ने विश्वविद्यालय में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
तो हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित प्रोफेसर ने दिया इस्तीफा, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए आरोप, ये थे सलमान रावी की रिपोर्ट। वहीं निर्माता अनुराग कश्यप की विवादित फिल्म उड़ता पंजाब पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहस पूरी कर ली है। कोर्ट इस पर अपना फैसला सोमवार को सुना सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेंसर शब्द मीडिया का बनाया हुआ है, आपका काम फिल्मों को सिर्फ सर्टिफिकेट देना है, और इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में भी बहस।
बीबीसी इंडिया बोल।
फिल्मों पर सरकारी कैंची क्यों? उड़ता पंजाब फिल्म पर कैंची चलाने के आदेश के बाद पूछा जाने लगा है सवाल, क्या जरूरत है सेंसर बोर्ड की? क्या आप किसी फिल्म को सरकारी काट छांट के बाद देखना चाहेंगे, या फिल्मकार को पूरी रचनात्मक आजादी मिलनी चाहिए? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी, और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 11 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो श्रोताओं, इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलिएगा। और अब विषय परिवर्तन करते हैं। चलो रियो में आज चर्चा 1948 ओलंपिक में भारत की जीत की, जब भारत ने इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को हराकर चौथी बार स्वर्ण पदक जीता था। बात करेंगे 1952 में हेम्स ट्रॉफी विजेता के डी सिंह बाबू की भी, और आपको मिलवाएंगे रियो ओलंपिक में तीरंदाजी में पदक की दावेदार दीपिका कुमारी से। पेश कर रहे हैं रेहान फजल।
चलो रियो। चलो रियो के आज के अंक में
अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1948 का साल कई मानों में महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी, ब्रेडमैन ओवल में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले थे, अरब और इसराइल के बीच पहला युद्ध शुरू हो चुका था, और चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास पर आधारित डेविड लीन की फिल्म ओलिवर ट्विस्ट ब्रिटेन में रिलीज हो चुकी थी। न सिर्फ ओलंपिक खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 12 साल के अंतराल पर हो रहे थे, बल्कि कई नए देश जिसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल थे, पहली बार एक आजाद देश के रूप में इन खेलों में भाग ले रहे थे। जब भारतीय हॉकी टीम एयर इंडिया के विमान मुगल प्रिंसेस से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरी, तो उसे भारतीय टीम के शेफ डे मिशन मोइनुल हक ने रिसीव किया।
All through the night, the flame was carried by relays of Englishmen, and by Thursday morning, still accompanied by television newsreel, it had reached the outskirts of London. Crowds thronging the route to cheer the torchbearer with his police escort and attendant runners on their way to Wembley. And here, quite at home in the blazing heat of this glorious afternoon, are the Indian athletes.
इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे राइट आउट किशन लाल। भारतीय दल को शुरू में लंदन से कुछ दूर रिचमंड के एक कैंप में ठहराया गया। उनके रहने और खाने का इतना बेहतरीन इंतजाम था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता एलेक्स वैलेंटाइन को अखबार के 20 जुलाई 1948 के अंक में लिखना पड़ा,
भारतीय खिलाड़ियों को न सिर्फ हर तरह का भारतीय खाना मिल रहा है बल्कि उसकी मात्रा भी काफी है। खाना सर्व करने वाले भी भारतीय हैं, उसमें से ज्यादातर बंगाल से आते हैं। डाइनिंग हॉल का माहौल भी भारत जैसा है। जोर जोर से ऊंची आवाज में बात करने और ठहाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। खाने की मेज पर दाल, सब्जी, मटन करी, रोटियां और भारतीय मिठाइयां भी दिख रही हैं। मजे की बात यह है कि खाने के बाद हर खिलाड़ी को दूध की एक एक बोतल भी दी जाती है।
भारतीय टीम ने लंदन में भारतीय जिमखाना के मैदान पर अभ्यास किया और जी भर कर लंदन घूमा। बाद में टीम के एक सदस्य जसवंत सिंह राजपूत ने टेलीग्राफ अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया,
हम सबको ओलंपिक पास दिए गए थे, उसको दिखाकर हमें बसों का किराया नहीं देना पड़ता था। हम देख सकते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन की कितनी बर्बादी हुई है, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद थे। युद्ध की विभीषिकाओं के बाद ओलंपिक की मेजबानी करना लंदन वासियों के लिए एक सुखद अनुभूति थी।
उस टीम के एक और सदस्य थे बलबीर सिंह, उनके लिए भारतीय हॉकी टीम का सदस्य होकर लंदन जाना बहुत रोमांचक अनुभव था।
Ex-masters. We were afraid of them when they were the rulers.
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे लिए अपने पूर्व शासकों की राजधानी जाना बहुत रोमांचक था। जब वो शासक होते थे तो हम उनसे डरा करते थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमारे साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार किया। ये हमारे लिए थोड़ी आश्चर्य की बात थी क्योंकि एक शासक के रूप में उनका हमसे व्यवहार थोड़ा कड़ा और रूखा होता था।
ये पहला मौका था जब भारतीय दल ओलंपिक खेलों में अपने झंडे के तले मार्च कर रहा था। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे लेस्ली क्लाडियस के लिए भी ये कभी न भूलने वाला क्षण था।
जब हम डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर वेम्बली स्टेडियम के 20,000 दर्शकों के सामने उतरे तो उन्होंने खड़े होकर हमारा स्वागत किया। मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ। ड्रेस कोड का पालन करते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार पगड़ी बांधी। हमारे सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह ने इसे बांधने में मेरी मदद की।
The New Dominion of India.
भारत ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपना पहला मैच 8-0 से जीता। दूसरे मैच में उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल अंतर को बढ़ाते हुए 9-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद भारत को बहुत मुश्किल से 2-0 से स्पेन के खिलाफ जीत मिली। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा था और हर जगह चर्चा थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही ओलंपिक हॉकी का फाइनल होगा। सेमीफाइनल में भारत तो हॉलैंड को हराने में सफल हो गया, लेकिन आशा के विपरीत पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया। फाइनल मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच। सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह को 68 साल बाद भी वो मैच इस तरह याद है जैसे ये कल की ही बात हो।
स्टेडियम फुल था, जो आजकल क्वीन है इंग्लैंड की, वो एज प्रिंसेस वहाँ पे उस दिन गेस्ट ऑफ ऑनर की थी। मैच शुरू हो गया, ग्राउंड वेट थी, थोड़ी स्लिपरी थी, तो कुछ हमारे प्लेयर्स ने अपने शूज वो भी उतार दिए थे क्योंकि पैर स्लिप होते थे, लेकिन मैंने बूट नहीं उतारे, उसी के साथ खेलता रहा। टीम अच्छा खेल रही थी। मैच शुरू होने से कुछ मिनट बाद इंडिया ने खुशकिस्मती से बेरेजरिया गोल स्कोर 1 कर दिया। तो उससे पहले वो बड़े शोर हो रहा था, कम ऑन ग्रेट ब्रिटेन, कम ऑन इंग्लैंड, कम ऑन ग्रेट ब्रिटेन। थोड़े मिनट के बाद दूसरा गोल भी हमने कर दिया। तो जब हमने 4 गोल कर दिए तो काफ़ी इंग्लैंड के जो वहाँ लोग थे वो भी इंडिया के हक में शोर कर रहे थे, कम ऑन इंडिया, मेक इट हाफ ए डजन, मेक इट हाफ ए डजन।
जैसे ही फाइनल विसल बजी, सिवाइल रो सूट पहने हुए ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कृष्णा मेनन दौड़ते हुए मैदान में घुस गए और भारतीय खिलाड़ियों को गले लगाने लगे। और फिर वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान बजा और भारतीय तिरंगा ऊपर गया।
Thank you.
जमीन पर हमारा झंडा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी।
आप सोच लीजिए, नया देश आजाद हुआ हो, अपना तिरंगा ऊपर जाए और अपना ही नेशनल एंथम गाया जाए, सारी दुनिया अटेंशन हो जाए, सलूट करे, तो उससे ज्यादा खुशी का वक्त और कौन सा हो सकता है।
और अब जिक्र हॉकी के महान खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू का। बाबू के हॉकी करियर की शुरुआत हुई थी 1938 में, जब उन्होंने दिल्ली में हुए टूर्नामेंट में ओलंपियन मोहम्मद हुसैन को डॉच करके गोल मारा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में पहले श्रीलंका गए और फिर पूर्वी अफ्रीका। इस दौरे में भारतीय टीम ने कुल 200 गोल किए, इसमें सर्वाधिक 70 गोल बाबू के थे। 1948 में रोम ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का उन्हें उप कप्तान बनाया गया। 1952 में बाबू भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनाए गए। उनके नेतृत्व में भारत ने हॉलैंड को फाइनल में 6-1 से हराकर लगातार 5वीं बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। केडी सिंह बाबू के बेटे विश्व विजय सिंह याद करते हैं।
1952 बहुत मजबूत हिंदुस्तान की टीम थी और काफी लोग ऐसे भी थे जो उस समय जब ये कैप्टन थे और जब ये लोग हेलसिंकी पहुंचे, हेलसिंकी वाज काफी कोल्ड क्लाइमेट हुआ करती थी और वहां पर हमारी टीम जो है बहुत अच्छा खेली और इन्होंने हॉलैंड को 6-1 से फाइनल में जीता था। जब वो लौटे थे तो कहते हैं कि वर्ल्ड में ये हाहाकार मचा था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट इन हॉकी कोई न देखा गया है न सुना गया है। इंटरनेशनल प्रेस ने उनको पहली बार किसी से अगर कंपेयर किया था, ही वाज कॉल्ड द ब्रैडमैन ऑफ वर्ल्ड हॉकी। हेलसिंकी में जीतने के बाद जो परफॉर्मेंस थी इंडियन टीम की और जिस तरह की कप्तानी थी उसको देखते हुए, वर्ल्ड की एक बॉडी है या थी कह लीजिए, जिसे हेम्सवर्ल्ड ट्रॉफी कहते हैं, हेम्सवर्ल्ड फाउंडेशन है लॉस एंजलिस में, और ये फाउंडेशन इफ यू कंपेयर वो नोबेल प्राइज के बराबर हुआ करती थी उस जमाने में, और आज भी उसकी अहमियत तो ऐसे ही है। 15 kg की एक सिल्वर शील्ड मिलती थी हर कॉन्टिनेंट के एक आदमी को फॉर बीइंग द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, एंड वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हमारे फादर को बीइंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड इन कॉन्टिनेंट एशिया उनको दी गई थी।
बाबू को ध्यानचंद के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन दोनों के खेल में जमीन आसमान का अंतर था। बाबू के साथ हॉकी खेल चुके ओलंपियन रघुबीर सिंह भोला याद करते हैं।
दोनों की डिफरेंट गेम थी। ध्यानचंद के पास आना बॉल आना तो अपने पास बार रखते नहीं थे। केडी सिंह का बाबू की उसकी खूबी ये थी कि वो बाल से नक्शेबाजी करते थे, क्योंकि वो बॉडी फेड करके, उनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल थी, बॉडी फेड करके उनके 7-8 खिलाड़ी बने देखे, अगर लाइन में खड़े कर दो एज ए गैप, सबको डॉच करके बॉल अपने पास रखेंगे। दैट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ ए मैन, दैट मीन्स ही बिलीव्ड इन पोजिशन ऑफ द बॉल। ध्यानचंद मेंट के भाई आए धकेलो, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, वो इतने सेल्फिश नहीं थे। फिर इनके बलबीर सिंह होते, एक सेंटर फॉरवर्ड 48 में भी रहे, 52 में भी रहे, आपस में इनकी लड़ाई होती थी। वो कहते थे, अबे बलबीर तू अपने आप को फन्ने समझते, मैंने गोल किया मैं पास देता हूँ तब तू बना है, और मैं पास नहीं देता देखता तू कैसे गोल करता है।
ध्यानचंद के बेटे और 2 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके अशोक कुमार बाबू को दुनिया का बेहतरीन हॉकी कोच भी मानते हैं।
मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के एक बहुत बेहतरीन कोचों में से शुमार थे वो। बहुत अच्छा उनका तरीका था लाउड स्पीकर लेके पूरे ग्राउंड में खड़े होना, और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनके याद है कि उनके मदर की डेथ हुई जिस वक्त, दोपहर के वक्त वो गए अंत्येष्टि करी और शाम को वो ग्राउंड के ऊपर खड़े हो गए, और जो उनका रुआब था एक स्टेडियम के अंदर, वो एक शाही रुआब था। शाही रुआब कोई बनाया हुआ नहीं, अपने आप में लोगों की श्रद्धा उनकी तरफ, क्योंकि 2 गोल्ड मेडलिस्ट और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो टेनिस हो, कैरम बोर्ड हो, या कोई महफिल हो, हर तरह की उनके पास चीजें थी।
म्यूनिक ओलंपिक के दौरान ही मेक्सिको के खिलाफ मैच में बाबू अशोक कुमार से नाराज हो गए।
72 में जब मैं ओलंपिक खेल रहा था तो मेक्सिको शायद टीम थी, हमारी टीम 3-4 गोल से लीड कर रही थी, लेकिन टीम अच्छा नहीं खेल रही थी। इंटरवल के टाइम में जब टीम सब इकट्ठी थी ग्राउंड के अंदर, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके और मुझे कहा, तो मेरे मुंह से निकल पड़ा कि बाबू साहब मैं अकेला नहीं खेल रहा हूँ, कई लोग भी खेल रहे हैं और उनकी वजह से भी खेल खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हारे पिताजी ने मेरे से बहस नहीं करी हॉकी के बारे में, तुम मुझसे बहस कर रहे हो और मैं देखूंगा तुम कैसे खेलते हो इंडिया के लिए। तो ये बातें मुझे चुभी और मेरे आंसू निकलने लगे। इंटरवल खत्म हो गया तो मैं ये सोचता हुआ खेलता रहा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा मुझे। बहरहाल उसके बाद एक बेहतरीन गोल मैंने किया मेक्सिको के टीम के ऊपर, और वो गोल टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल था। जब खेल खत्म हुआ तो उन्होंने अपनी जेब से 20 मार्क निकाले मुझे और मुझे कहा कि ये जाके अपने बाप के लिए टाई लेना, उनको दे देना।
और अब तीरंदाजी, जिसमें रियो ओलंपिक में भारत को बहुत उम्मीदें हैं। दीपिका कुमारी पिछले वर्ष कोपेनहेगन विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन के आधार पर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 28 अप्रैल को उन्होंने शंघाई में हो रही विश्व प्रतियोगिता में 720 में से 686 अंक स्कोर कर दक्षिण कोरिया की बो बाय के रिकॉर्ड की बराबरी की। हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त ने उनसे ट्रेनिंग कैंप के दौरान संपर्क किया और पूछा कि रियो ओलंपिक के लिए 4 सदस्यीय भारतीय टीम के क्वालिफाई करने पर कितना टेंशन दूर हुआ है।
एक्चुअली टेंशन दूर नहीं हुई, टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद अभी ओलंपिक जो मेन जिसके लिए हमने क्वालिफाई किया है तो वो बाकी है, सभी उसके लिए प्रिपरेशन करना है।
लंदन ओलंपिक्स में काफ़ी दबाव था, पर इस तरह का दबाव आप पर ना बने, क्या इसके लिए मनोचिकित्सक या फिर कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी जानी चाहिए आपको लगता है?
ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम खुद ही इग्नोर कर सकते हैं, तो हर चीज़ वो नहीं कर सकता, तो कुछ चीज़ें जो मेरी तरफ से भी होनी चाहिए ताकि मैं खुद को हेल्प कर सकूं और मेरा माइंड ज़्यादा डिवाइड ना हो इधर।
भारत एक ऐसी जगह है जहां ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल नहीं आते, खिलाड़ी अगर क्वालिफाई भी करते तो मीडिया की भीड़ लग जाती है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदें हैं ये भी खिलाड़ियों पर बहुत दबाव बनाती हैं?
ऑब्वियसली ये होती ही हैं, उम्मीदें ही तो दबाव बनाती हैं, और क्या बनाती है। क्योंकि जब नया नया होता है तो किसी को कोई उसको जानता नहीं है, तो वो बिंदास होकर खेलता है, हारे जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतने के बाद हर कोई जानता है उसे, तो ये रहता है कि अगर हम हार के जाएगा तो क्या बोलेगा।
इसी समय आप दुनिया की नंबर एक तीरंदाज भी रह चुकी हैं, तो आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है इंटरनेशनल लेवल पर?
बहुत ज़्यादा बड़ा है, इवन जो रूल्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं और उनकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
अभी यहाँ पर 10वीं रैंकिंग थी, तो आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आपकी जिस वजह से फाइनल में भी पहुंच सके आप?
ऐसा नहीं है, 8 हो या 10 हो या 9 हो, आजकल रूल ऐसे हो गए हैं कि एक नंबर वाले को भी कोई भी आके गिरा सकता है।
अपनी साथी रिमिल और बोमैले के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि आप तीनों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया।
एक्चुअली रिमिल और लक्ष्मी दी है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लक्ष्मी दी इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल पहुंची, रिमिल भी अच्छा परफॉर्म किया उसने, वो भी अच्छा परफॉर्म करती है इंडिविजुअल में भी और टीम में भी।
ये थी एस तीरंदाज दीपिका कुमारी। चलो रियो में आज इतना ही। रेहान फजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इस कार्यक्रम को आप आज रात 11 बजे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर भी सुन सकते हैं। और अगर मैं BBC हिंदी पन्ने की बात करूं तो पहली खबर इस पर लगी, आसमान से परिंदे के गिरने का इंतज़ार ना करें, मेक्सिको की राजदूत मेलबा प्रिया ने दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए अनोखा रास्ता अपनाया है। क्या है ये रास्ता, अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महान बॉक्सर मोहम्मद अली के गृहनगर लुईविल में आज हजारों लोग उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। 3 बार हैवीवेट चैंपियन रहे मोहम्मद अली का बीते शनिवार को निधन हो गया था। सीरिया के दारिया शहर में साल 2000 के बाद पहली बार राहत सामग्री बांटी गई है। राहत सामग्री में दवाएं और खाने का सामान शामिल है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बीते मार्च में हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। इराक के फलूजा में सेना के अभियान में शामिल एक कमांडर के मुताबिक सेना फलूजा के केंद्र से महज 3 किलोमीटर दूर है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति।